नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डिजाइनिंग गेम्स, अ गाइड टू इंजीनियरिंग एक्सपीरियंसेज। गेम डिजाइनर टाइनन सिल्वेस्टर की व्यावहारिक और वैचारिक पुस्तक है। इसे ओरायली मीडिया ने प्रकाशित किया था और इसका केंद्र यह प्रश्न है कि खिलाड़ी किसी खेल को केवल नियमों के समूह के रूप में नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव के रूप में क्यों महसूस करते हैं। सिल्वेस्टर, जो बायोशॉक इन्फिनिट पर लेवल और सिस्टम डिजाइनर रह चुके हैं और रिमबर्ड के निर्माता हैं, खेलों को अनुभव उत्पन्न करने वाली कृत्रिम प्रणालियां मानते हैं। उनके अनुसार नियम, खिलाड़ी की क्रियाएं, कथा, दृश्य श्रव्य प्रस्तुति और गति मिलकर भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाते हैं। पुस्तक का उद्देश्य कोई तय नुस्खा देना नहीं है। इसके बजाय यह डिजाइनरों को ऐसे वैचारिक औजार देती है जिनसे वे हर निर्णय के लाभ, जोखिम और प्रभाव का आकलन कर सके। इसमें भावनाओं को प्रेरित करने वाली मैकेनिक्स, कथा और इंटरैक्टिविटी का संबंध, मल्टीप्लेयर व्यवहार, पुरस्कार, खिलाड़ी की सीखने की प्रक्रिया, पुनरावृत्त परीक्षण, टीमवर्क और बाजार स्थिति जैसे विषय शामिल हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, खेल को नियमों का संग्रह नहीं, अनुभव उत्पन्न करने वाली प्रणाली समझना। सिल्वेस्टर की बुनियादी स्थापना है कि खेल तैयार अनुभवों की तरह सीधे उपभोग नहीं किए जाते। फिल्म या उपन्यास में रचनाकार घटनाओं का क्रम तय करता है, जबकि खेल में रचनाकार नियम और सीमाएं बनाता है, और घटनाएं खिलाड़ी की पसंद तथा उन नियमों की परस्पर क्रिया से पैदा होती है। इसलिए मैकेनिक्स अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, वे उन घटनाओं को संभव बनाने का माध्यम है जो खिलाड़ी के लिए मायने रखती है। जीत, हार, खतरा, सुरक्षा, संसाधन का मिलना या खोना, प्रतिष्ठा, सहयोग, विश्वास और विश्वासघात जैसी स्थितियां भावनात्मक महत्व प्राप्त कर सकती हैं। यह दृष्टि डिजाइनर को केवल यह पूछने से आगे ले जाती है कि कोई फीचर काम कर रहा है या नहीं। असली प्रश्न होता है कि उस फीचर से खेलते समय कौन सी घटनाएं बनेंगी, खिलाड़ी उन्हें कितना महत्वपूर्ण मानेगा और वे कौन सा अनुभव रचेंगी। पुस्तक इस कारण सिस्टम डिजाइन और खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को अलग नहीं मानती। अच्छी मैकेनिक्स वह नहीं जो केवल जटिल या नहीं हो, बल्कि वह है जो इच्छित प्रकार की अर्थपूर्ण खेल स्थितियां लगातार उत्पन्न कर सके। दूसरा, भावनात्मक ट्रिगर, उत्तेजना और काल्पनिक परत का संयुक्त प्रभाव। पुस्तक का विशिष्ट योगदान यह समझाना है कि खेलों में भावना केवल कहानी से नहीं आती। खेल की घटनाएं खिलाड़ी के भीतर तनाव, राहत, उत्साह, आशंका या उपलब्धि जैसी प्रतिक्रियाएं जगा सकती है। सिल्वेस्टर इस प्रक्रिया में अवचेतन भावनात्मक ट्रिगरों और भावनात्मक गलत आरोपण की कठिनाई पर ध्यान देते हैं। खिलाड़ी अक्सर महसूस की गई भावना का कारण तुरंत और सही ढंग से नहीं पहचानता, अतः कोई दृश्य तत्व, शत्रु का रूप, संगीत या कथा मैकेनिक्स से उत्पन्न उत्तेजना को एक अर्थ और नाम दे सकता है। उदाहरण के रूप में जोखिमपूर्ण निर्णय से पैदा तनाव को काल्पनिक संदर्भ भय, वीरता, चोरी या जीवित बचने की अनुभूति में बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कथा केवल सजावट है, न ही यह कि मैकेनिक्स अकेले पर्याप्त है। खेल का अनुभव तब मजबूत होता है जब नियमों से बनी घटनाएं, खिलाड़ी की भागीदारी और काल्पनिक प्रस्तुति एक दूसरे का समर्थन करें। यह ढांचा डिजाइनर को भावनाओं की व्यापक श्रेणी पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य केवल मजा नहीं बल्कि तनाव, जिज्ञासा, अपनापन, नियंत्रण, पछतावा या विजय जैसी उपयुक्त और परस्पर जुड़ी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। तीसरा, लालित्य, खिलाड़ी की सीख और रूपक शब्दावली के माध्यम से स्पष्ट डिजाइन। सिल्वेस्टर खेल डिजाइन में लालित्य को महज सादगी नहीं मानते। लालित्य का संबंध इस बात से है कि नियम, उनके परिणाम और खिलाड़ी की समझ कितनी स्वाभाविक ढंग से एक साथ काम करते हैं। खिलाड़ी को यह सीखना होता है कि दुनिया में क्या संभव है, किन संकेतों पर भरोसा करना है और किस क्रिया का क्या परिणाम होगा। यदि प्रस्तुति और नियम एक दूसरे के विरुद्ध संकेत दें तो खिलाड़ी की मानसिक ऊर्जा रुचिकर निर्णयों के बजाय नियमों को समझने में खर्च होगी। पुस्तक रूपक शब्दावली की अवधारणा के जरिए बताती है कि डिजाइनर को ऐसे परिचित संकेत बनाने चाहिए जिनसे खिलाड़ी समझ सके कि कौन सी चीज खेल की मैकेनिक है और उससे कैसे जुड़ना है। यह केवल ट्यूटोरियल लिखने का प्रश्न नहीं है। वस्तुओं का रूप, ध्वनि, दृश्य, भाषा, नियंत्रण और प्रतिक्रिया सभी खिलाड़ी को खेल के व्याकरण का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। स्पष्टता का लक्ष्य हर रहस्य समाप्त करना नहीं बल्कि उचित प्रकार की अनिश्चितता बचाना है। खिलाड़ी को चुनौतीपूर्ण विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए, बुनियादी इंटरफेस या अस्पष्ट नियमों का अनुमान लगाने में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह लालित्य सीखने की गति, निर्णय की गुणवत्ता और डूबने की क्षमता तीनों को प्रभावित करता है। चौथा, पुरस्कार, मल्टीप्लेयर अंतःक्रिया और अर्थपूर्ण निर्णयों का संतुलन। पुस्तक पुरस्कारों को अलग से जोड़े गए प्रलोभन के बजाय पूरे खेल की संरचना का हिस्सा मानती है। कोई पुरस्कार खिलाड़ी को किस व्यवहार की ओर ले जा रहा है, वह तत्काल संतोष और दीर्घकालिक लक्ष्य के बीच कैसा संबंध बना रहा है, और क्या वह खेल के मूल अनुभव को मजबूत करता है, ये अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पुरस्कार केवल दोहराव या बाहरी संग्रह को बढ़ावा दे तो वे उस अनुभव से टकरा सकते हैं जिसे खेल वास्तव में बनाना चाहता है। इसी तरह मल्टीप्लेयर डिजाइन में रोचकता केवल अधिक खिलाड़ियों के जुड़ने से नहीं आती। खिलाड़ी एक दूसरे की मंशा, क्षमता, जोखिम और संभावित प्रतिक्रिया को पढ़ सके तो सामाजिक तनाव और सहयोग के अवसर बनते हैं। दूसरे खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना अक्सर प्रतिस्पर्धा, गठबंधन और धोखे को अर्थ देता है। यह दृष्टि निर्णयों को केंद्र में रखती है। विकल्प तभी असरदार है जब उनके परिणाम समझ में आते हों, कुछ दांव पर लगा हो और खिलाड़ी के पास निर्णय को प्रभावित करने की वास्तविक क्षमता हो। इसलिए पुरस्कार, सूचना और सामाजिक नियमों को साथ डिजाइन करना पड़ता है। वे मिलकर यह तय करते हैं कि खिलाड़ी केवल कार्य कर रहा है या सच में विचारपूर्ण चुनाव कर रहा है। अंत में पहले से तय योजना के बजाय पुनरावृत्ति, परीक्षण और उत्पादन की वास्तविकता। सिल्वेस्टर के अनुसार खेल डिजाइन में अत्यधिक अग्रिम निर्णय खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कागज पर समझ आने वाला नियम खेलते समय अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। खेल एक गतिशील प्रणाली है जहां छोटी मैकेनिकल तब्दीलियां खिलाड़ी की रणनीति, गति, भावना और सामाजिक व्यवहार को बदल सकती है। इसलिए पुस्तक पुनरावृत्ति को केंद्रीय कार्यप्रणाली मानती है। विचार बनाना, उसका प्रारूप तैयार करना, खेल कर देखना, परिणामों का विश्लेषण करना और फिर संशोधन करना डिजाइन को वास्तविक अनुभव के निकट लाता है। परीक्षण का उद्देश्य केवल बग ढूंढना नहीं है, यह जानना है कि खिलाड़ी क्या समझ रहा है, किस क्षण उसकी रुचि घटती है, वह कौन सी रणनीति अपनाता है और क्या इच्छित भावना वास्तव में बन रही है। फिर भी पुस्तक अनियोजित विकास का समर्थन नहीं करती। टीम के साथ काम करने, रचनात्मक गतिरोध से बचने और परियोजना को दिशा देने के लिए योजना जरूरी है। बाजार स्थिति भी डिजाइन को प्रभावित करती है, क्योंकि लक्षित दर्शक, अपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धी संदर्भ तय करते हैं कि कौन सी जटिलता, प्रस्तुति और दायरा व्यवहार्य होगा। इसीलिए उत्पादन संबंधी निर्णयों को रचनात्मक कार्य से अलग नहीं रखा जा सकता। निष्कर्ष में, डिजाइनिंग गेम्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो खेल बनाना चाहते हैं, खेलों का गंभीर विश्लेषण करना चाहते हैं या मैकेनिक्स और खिलाड़ी अनुभव के संबंध को अधिक स्पष्टता से समझना चाहते हैं। आरंभिक डिजाइनर इससे नियमों के पीछे छिपे अनुभवात्मक प्रश्न देखना सीख सकते हैं। मध्यम स्तर के डिजाइनर इसे अपने निर्णयों, परीक्षणों और टीम चर्चाओं के लिए एक साझा वैचारिक भाषा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पुस्तक प्रोग्रामिंग, कला निर्माण या किसी विशेष इंजन का तकनीकी प्रशिक्षण नहीं देती। इसका लाभ इस बात में है कि यह डिजाइनर को हर फीचर के बारे में अधिक सटीक प्रश्न पूछना सिखाती है, जैसे खिलाड़ी क्या करेगा, उस क्रिया से कौन सी घटना बनेगी, उसका भावनात्मक अर्थ क्या होगा और क्या प्रस्तुति उस अर्थ को सहारा दे रही है। इसी कारण यह सामान्य प्रेरक सलाह या केवल लोकप्रिय खेलों के उदाहरणों पर आधारित पुस्तकों से अलग दिखती है। सिल्वेस्टर खेलों को अनुभव की इंजीनियरिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन रचनात्मकता को सूत्रों में सीमित नहीं करते। वे सिद्धांतों को निर्णय लेने के औजार की तरह रखते हैं, अंतिम आदेश की तरह नहीं। भावनाओं, काल्पनिक संदर्भ, स्पष्टता, सामाजिक अंतःक्रिया, पुरस्कार और पुनरावृत्ति को एक ही ढांचे में जोड़ना इसकी प्रमुख ताकत है। परिणामतः पाठक केवल बेहतर विचारों की तलाश नहीं करता, बल्कि यह जांचने की क्षमता विकसित करता है कि कोई विचार खेलते समय वास्तव में क्या अनुभव पैदा करेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं टीनान सिल्वेस्टर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।